मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 1 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक उन नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है आकाश राज, आपका गांव है सारे, जिला है भागलपुर, बिहार से। तो आकाश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच पूछे तो कल के अखबार में, यानी कि जो आज सुबह अखबार आया है, कल की खबरों में, चाहे वो न्यूज हो या डीडी न्यूज हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं थी। और आपने रेडियो न्यूज में देखा कि उसका लगभग आधा समय केवल अभी जो असम में जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया है उसी मुद्दे को लेकर था, और यही मुद्दा लगभग संसद में भी छाया रहा। तो मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। तो मुख्य विषय के तहत तो मैं थोड़ी सी नागरिकता पर बात करूंगा, भारत के सिटीजनशिप के ऊपर। और उससे पहले मैं थोड़ी सी जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है, इस घटना को आधार बना करके सिविल सर्विस में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है, क्यों बन रही है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारियां देना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, दो दिन हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि इस पर जबरदस्त राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। संसद में भी गहमागहमी हो रही है और अखबारों में भी खूब आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स भी हो रहे हैं। यह होना ही था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने आज के अखबार में ये भी पढ़ा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये जो 40 लाख लोगों के जो नाम, यानी कि जो रजिस्टर में जिनका नाम नहीं है, तो अभी तो फिलहाल, जब तक अभी तो वो दावा करेंगे और फिर से उनकी जांच होगी, तो अभी उनके पास वक्त है कि वो नागरिकता हासिल कर सके। लेकिन बाय द वे, चलिए अभी चूंकि उनके नाम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि अभी ये नागरिक नहीं है। तो स्वाभाविक है कि ये जो 40 लाख लोग हैं ये भारत में घुसपैठी हैं या शरणार्थी हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। तो बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे यहां के लोग नहीं है, हमारे नहीं है। इसका मतलब है बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब चाहे जो भी कदम उठाए, चाहे नागरिकता दे या इन्हें बाहर निकालना चाहे, तो हम तो नहीं लेने वाले, बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया। इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, रोहिंग्या, है ना, वो म्यांमार, आप भारत के इस सीमा पर है, आप देखिए कि म्यांमार, और म्यांमार से जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, आपने 6 महीने 8 महीने पहले ध्यान दिया होगा कि काफी उनको लेकर के इंटरनेशनल बल्कि ये इश्यू बना था। बांग्लादेश भी इसको लेकर के परेशान था, भारत भी परेशान था, क्योंकि भारत में भी वो असम वाले क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थी आ रहे थे, तो कुछ रोहिंग्या भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो मामला है, हमारे शरणार्थी का मामला, एक तरफ बर्मा से जुड़ेगा, दूसरी तरफ बांग्लादेश से जुड़ेगा। देखिए, अभी तो चूंकि अभी क्लियर होना है कि कितने लोग हैं भी कि नहीं है, उनके साथ सरकार क्या सुलूक करने जा रही है, तभी स्थितियां क्लियर होंगी। यहां मैं आपको बस केवल ये बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आपके लिए ये इश्यू महत्वपूर्ण हो गया है, इन दोनों देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं, उन संबंधों में खटास पैदा करने में या इस समस्या के निराकरण में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, क्या भूमिका रहती है कहना चाहिए, इस पर आप लगातार ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक और बात है जो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, और आप देखेंगे कि आगे चल करके इस पर मुझे लगता है कि आर्टिकल्स भी आएंगे, कि देखिए, चलिए हम इन्हें शरणार्थी मान लेते हैं, 40 लाख शरणार्थी, ये माना जाता है कि दुनिया में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी हैं, और उसमें से 40 लाख तो यही हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़ी संख्या भारत में है। और शरणार्थियों की जो समस्या है वो धीरे 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 अब एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है। इसमें शरणार्थी भी आप कह लीजिए, घुसपैठिए भी कह लीजिए। अमेरिका के बारे में आप सुनते हैं कि अमेरिका के नीचे ही देखिए बिल्कुल सटा हुआ मैक्सिको है, जहां पर अब ट्रंप साहब पूरी दीवार खड़ी कर रहे हैं। मैक्सिको के बहुत लोग जो है अमेरिका में जाते हैं, खासकर रोजगार वगैरह, रोजगार पाने के लिए। यूरोप के जो दूसरे देश है, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे हैं, अगर आप उधर इटली वगैरह को देखेंगे, भूमध्य सागर के तट पर हैं आप, देखिए तो उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे तो जो सीरिया वगैरह में जहां प्रॉब्लम चल रही है, तो यहां से लोग भाग भाग करके जाते हैं समुद्री नौकाओं के जरिए और फिर वो यूरोप में वो घुस जाते हैं। तो इस तरह से जो अवैध स्थानांतरण है, आप कह लीजिए, काफी मात्रा में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। यानी कि हो सकता है कि अगर इस तरह के आर्टिकल्स आए तो फिर ये जो शरणार्थियों का मामला है या घुसपैठियों का मामला है एक वैश्विक मुद्दा बन जाए, अभी जिसके केंद्र में ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होगा। तो अगर ये वैश्विक मुद्दा बन जाता है तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। दो प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत भारत के बांग्लादेश और बर्मा के साथ संबंध को लेकर के, और दूसरा वैश्विक शरणार्थी या घुसपैठी समस्या। तीसरी बात, आपके सिलेबस में बकायदे है मित्रों सिक्योरिटी सुरक्षा। अगर आपने अमित शाह जी का बयान आज ध्यान से न्यूज में भी वो था सुना होगा, मतलब कल की रात की न्यूज में है, तो उन्होंने कहा कि इसका जो संबंध है हमारी सीमा की सुरक्षा से भी है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से है क्योंकि सीमा क्षेत्र है वो, और दूसरा का हमारे नागरिकों की सुरक्षा से भी है। देखो कि नागरिकों की सुरक्षा इसका संबंध इस रूप में है कि भाई हो सकता है कि इसी के माध्यम से बाहर से आतंकवादी आएं और फिर देश के अंदर कहीं भी घुस करके वो कुछ कोई भी गतिविधि करें, तो इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी कि यह जो मामला है अब सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है, तो यह सिक्योरिटी में भी आपके शामिल हो गया है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। एक बात और है, तो ये थोड़ा सा हट करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वो बात है कि जैसे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान दिया है कि ये बहुत गलत है और क्या किया जाएगा, हो सकता है कि गृह युद्ध इससे छिड़ जाए, इस तरह की बातें वो कह रही हैं। और दूसरे राजनीतिक दल भी अपने अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी है बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं, कोई भी अपनी अपनी बात रखते ही है। या ये मामला क्या है, इस तरह से वो चीज क्यों हो रही है जिसे हम सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसे हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देख रहे हैं, वहां इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? देखिए इसमें यहां पर जो है डेमोक्रेसी और जो वोट बैंक है उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा और समझना होगा, मतलब पॉलिटी को समझना होगा। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मूलतः वोट पर आधारित व्यवस्था है, जिसको अधिक वोट मिलेंगे वो सत्ता में आएगा, फिर चाहे वो वोट सही हो या सही या गलत, मतलब है कि जो आप अपने वोट के जरिए सही पार्टी को चुन रहे हैं, गलत पार्टी को चुन रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, सवाल बस केवल इतना है कि आपने चुना। इसमें आप दो उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो अब जनरली अखबारों में आने लगा है। उदाहरण के तौर पर ब्रेक्जिट, ब्रिटेन ने यूरोपीय समुदाय से, यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया और इसके लिए जनमत कराया गया। बहुत थोड़े से अंतर से लोगों ने यह फैसला किया कि हमें ब्रेग्जिट करना है, यानी कि यूरोपीय समुदाय से अलग होना है, जबकि बहुत थोड़ा सा फर्क है लेकिन आपको मानना है। सच पूछे तो अमेरिका में जो हमारे ट्रंप राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, वहां भी यही कहा जाता है कि बस थोड़े से फर्क से जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बने। इसका तो हालांकि जो फार्मूला है वो बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका भी कहना है कि जो खासकर गांव के दूर दराज के या निम्न वर्ग के लोग थे उन्होंने ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम रोजगार आपको देंगे, और स्वाभाविक है कि जिनके अब जिनका पेट खाली है वो रोजगार को सबसे बड़ी प्राथमिकता देंगे ही। तो अब यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो वोट बैंक है वो इतना शक्तिशाली है कि अच्छे खासे जो चीज होनी चाहिए उसे होने से रोक देता है, और जो नहीं होनी चाहिए सामान्यतया है, जो एक प्रबुद्ध वर्ग होता है और प्रबुद्ध वर्ग समझता है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको वो होने देता है। ये एक डेमोक्रेसी का समझ लीजिए कि करैक्टर है। और डेमोक्रेसी में जो आप एक प्रेशर ग्रुप का नाम सुनते हैं, और आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में सेकंड पेपर में है भी, मेंस में, प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह, तो कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक हैं ये दबाव समूह का भी काम करते हैं। वो दबाव डालकर और अपनी बात मनवाते हैं सरकार से। जैसे अभी मराठा आरक्षण के मामले को ले लीजिए, तो मराठा आरक्षण का भी मामला क्या है, मतलब वो एक ग्रुप है, वो सरकार पर दबाव डाल रहा है, अपनी मांग रखना सरकार पर दबाव डालना ही है, और उस तरीके से फिर वो चाहता है कि उसकी मांगे पूरी हो। तो आपको इस तरह की चीजों को बहुत ही बैलेंस तरीके से देखना होगा। राइट फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर के मैंने कुछ बातें की हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिविल सर्विस यहीं से अपने लिए टॉपिक उठाता है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। जैसे अभी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो रही है, तो ये मान करके चले कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके लिए अब हमारा जो सिटीजनशिप का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आपको चाहिए कि आप नागरिकता वाले चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ें, मतलब तैयार कर लें। अब देखिए, आना नहीं आना वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपनी निगाहें उस तरीके से ओपन रखनी होंगी कि अगर बाई दी वे आ जाता है तो आप लिख सकें, और फिर ये ना कहें कि अरे ये कहां से आ गया, ये तो बहुत ही मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था और इस पर प्रश्न पूछ लिया गया है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भले ही डायरेक्ट करंट से न हो, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो करंट से जुड़े हुए होते हैं या करंट अफेयर से संबद्ध होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, यहां मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे संविधान के भाग दो का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि प्री में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। 5 से 11 के बारे में, नागरिकता में के अंतर्गत नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और सच पूछे तो किसी भी दुनिया के देश में दो तरह के नागरिक होते हैं, एक तो हमारे अपने देश के नागरिक होते हैं और दूसरे विदेशी नागरिक होते हैं। बट नेचुरल है कि जो देश के नागरिक हैं उनको सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी नागरिकों को आप सारे संवैधानिक अधिकार नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश का नागरिक है, वो भारत में है, और उसको आप नहीं कहेंगे कि वो राष्ट्रपति भारत का बन सकता है, तो इस तरह से उनमें थोड़ा सा डिफरेंट अंतर किया जाता है। हमारे संविधान ने मित्रों संसद को, अब यहां देखिए कि हमारे संविधान में बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता के ऊपर कानून बनाए, नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। तो सबसे पहले जो संसद ने जो कानून पारित किया था नागरिकता को लेकर के, उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, नागरिकता अधिनियम 1955, और समय समय पर फिर इनमें संशोधन भी होते रहे हैं, वो डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहां डिटेल में जाना मैं, वक्त भी नहीं है और जरूरी भी नहीं समझता हूं। हमारे यहां जो नागरिकता को जो जो हासिल करने के जो जो बेसिक्स रखे गए हैं, जो आधार रखे गए हैं, वो देखिए क्या है। बस थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, फिर आप इस चैप्टर को अपने ढंग से तैयार कीजिएगा। एक तो जन्म से, कि आप जन्म से भारत में हैं, उसकी डेट वगैरह है। इसके बाद वंश, कि हमारे दादा परदादा पिता यहां रहे हैं, उन्होंने जन्म लिया है। फिर यह है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार को आवेदन दे सकता है कि भाई मैं आपके देश का नागरिक बनना चाहता हूं, फिर वो सरकार उस पर सोचेगी। फिर प्राकृतिक रूप से, यदि आप किसी देश के नागरिक हैं और भारतीय नागरिकता के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से सरकार उस पर विचार कर सकती है। और आखिरी में होता है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि भारत में कोई विदेशी क्षेत्र का हिस्सा, भारत में कोई विदेशी क्षेत्र शामिल हो जाता है, तो बट नेचुरल है कि वहां जो रहने वाले नागरिक हैं उनको फिर भारतीय नागरिक घोषित किया जा सकता है। एक बात यहां अंत में और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि भारत में आपको मालूम है कि हमारे यहां एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो केवल भारत के सिटीजन्स हैं, लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब जो अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अमेरिका के नागरिक तो हैं ही, इसके साथ ही साथ वो जिस राज्य में है उस राज्य के भी नागरिक होते हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हर कोई भारत का ही नागरिक होता है। तो दोस्तों, ये मुख्य विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आज काफी क्लिपिंग्स हैं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं, ध्रुव, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, और शुभम अग्रवाल खरसिया छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।